الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास के अंदर हम सूरह अनआम की तफसीर पढ़ रहे थे, मार्फ कुरान की जिल्द नंबर 3 से। रमजान मुबारक से पहले भी यही सूरह अनआम ही चल रही थी, और रमजान मुबारक के दौरान भी, जिसमें कि हमने मर्दों को भी शामिल कर लिया था इसी क्लास के अंदर, तो इसमें भी सूरह अनआम की तफसीर ही हमने चलाई, और कुछ आयात जो है वो हमने रमजान मुबारक में मुकम्मल करके पढ़ ली। तो अब उसके बाद का सिलसिला जो है वो जाहिर है कि गैर रमज़ान और रमज़ान के अंदर तो बहुत फ़र्क होता है। रमज़ान मुबारक की मिसाल तो हमारे मशायख सूरज की तरह से देते हैं कि जिसकी रोशनी कितनी ज़्यादा होती है, और जो बाकी महीने होते हैं उनकी मिसाल सितारों की तरह देते हैं जिनकी रोशनी बहुत सूरज के मुकाबले में बहुत कम होती है। हत्ता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों वाली भी मिसाल देते हैं कि जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के नबी थे और खुसूसी उनको मुकाम हासिल था, वो रमजान मुबारक की मानिंद थे, और बाकी जो 11 थे वो साल के 11 महीनों की मानिंद हैं। तो रमजान मुबारक में हमने भी अल्लाह ताला की तौफीक से रोजाना के हिसाब से जो है वो कुरान, दरस कुरान का सिलसिला चलाया, क्योंकि वो शहर कुरान भी है, शहरुल कुरान है ना। और रमजान मुबारक खत्म होने के बाद फिर वही बैक टू द रूटीन के हफ्ते में सिर्फ एक बार दरस कुरान खवातीन में, और एक बार दरस कुरान मर्दों में, जो कि आज ही की शाम इंशाल्लाह होगा। वो दरस कुरान जो है वो सूरह मायदा से चल रहा था, और खवातीन में सूरह अनाम से चल रहा था। तो ये जो आयात अभी तिलावत की गई, ये आयात नंबर 103, 104, 105, 106 और 107 हैं सूरह अनफाल की। तो पहले हम इनका तर्जुमा पढ़ लेंगे, और फिर खुलासे तफसीर और मारिफ व मसाइल इसके बाद पढ़ेंगे, जैसे कि मारिफ कुरान की तरतीब है। पीछे जो आयात हमने रमजान मुबारक में पढ़ के मुकम्मल की थी, तो उनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कायनात के बारे में एक खास तरतीब के साथ बयान फरमाया, जो तरतीब पिछली आयात के मारूफ मसाइल में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी। और यही वो आखिरी बात थी जो कि हमने रमजान मुबारक में पढ़ी, कि एक अजीब तरतीब की रियायत है। तीन किस्म की कायनात अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र फरमाई, एक सिफलियात, दूसरी उलूवियात, और तीसरी कायनाती जव। सिफलियात यानी सिफली, नीची नीचे रहने वाली कायनात, और दूसरी उलूवियात यानी बुलंद रहने वाली कायनात, यानी जहां पर हम हैं उससे ऊपर। ठीक है, चाहे हम सऊदी अरब में बैठे हुए हों तो हमारे ऊपर, चाहे हम इंडिया में बैठे हों तो हमारे ऊपर, चाहे हम यूरोप में बैठे हों तो वहां जो ऊपर बनता है, क्योंकि आपको पता है ना दुनिया गोल है, ठीक है, गोल नुमा है, एग्जैक्टली गोल नहीं है लेकिन इसी तरह की चीज है, एक एक प्लेट की मानिंद नहीं है, एक फ्लैट सरफेस नहीं है कि जो जो पाकिस्तान वालों के ऊपर होगा वही जो है वो सऊदी अरब वालों के ऊपर भी होगा, जो सऊदी अरब वालों के ऊपर की जगह होगी वही जो है वो अमेरिका वालों के ऊपर की जगह भी होगी, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है? बल्कि दुनिया तो गोल है, तो फिर यहाँ का ऊपर अलग है, वहां का ऊपर अलग है, और किसी और जगह का ऊपर अलग है। तसव्वुर करें ना अपने जहन में एक बॉल, ठीक है? तो बॉल के किसी मुकाम पर कोई चीज पड़ी है तो उसके ऊपर की जगह अलग होगी, है ना? तो ये सारा ऊपर का मामला जो है वो उलूवियात में आ जाता है, और नीचे का मामला जो है वो सिफलियात में आ जाता है, और इनके दरमियान का मामला कायनाते जव, जिसको अंग्रेजी में एनवायरमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है? या एटमोस्फेयर तो खैर नहीं, एनवायरमेंट का लफ्ज ज्यादा अप्रोप्रिएट है उसके लिए। तो फिर ये हमने पिछली क्लास में, आखिरी जो क्लास थी उसमें पढ़ के मुकम्मल कर लिया था। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ला तुद्रिकुहुल अबसार। अबसार ये बसर की जमा, ठीक है? बसीरत आंखों की जो जो सलाहियत होती है उसको बसीरत कहते हैं, यानी देखने की सलाहियत, ठीक है? क्या शेयर किया हुआ आपने स्क्रीन पर? खुलासे तफसीर, अभी हम खुलासे, हाँ चले अभी तो हम तर्जुमा पढ़ रहे हैं, चले बेहतर है। तो एक मिनट, अब ये इन्होंने आपको पीडीएफ फाइल नहीं भेजी? पीडीएफ फाइल जो होती है ना वो अगर आप शेयर करेंगी तो फिर मेरी विंडोज डिस्टर्ब नहीं होती। बहरहाल अब तो हो गया जो हो गया। तो ला तुद्रिकुहुल अबसार, यानी जो आंखें हैं, आंखों की देखने की जो सलाहियत है ना वो उसको नहीं पा सकती। अदरका युद्रिकु इदराकन, ठीक है? ये जो लफ्ज है ना इदराक, ये इदराक उर्दू में हम जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है समझ हासिल हो जाना, ठीक है? और यही मफहूम जो है वो किसी चीज को पकड़ लेना, किसी चीज को, जैसे कि कोई आगे कोई भाग रहा है और पीछे से कोई उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसको अगर पकड़ लेगा ना, या उस तक पहुंच जाएगा, आगे भागने वाले के तक पहुंच जाएगा, तो इसको भी इदराक करना, इदराक हासिल करना कहेंगे, ठीक है? तो नजर आ जाना ये भी फिर इदराक के मानी में होता है कि भाई हमें कोई चीज अपनी आंखों से हमने पा लिया उसको, ठीक है? हमारी आंखें वहां तक पहुंच गई तो इसको भी इदराक कहेंगे, ठीक है? या आप किसी को जाकर के हाथों से पकड़ लें तो उसको भी इदराक कहेंगे, या कहीं तक आपकी समझ पहुंच जाए, आपकी समझ यानी वो बात आपके समझ में आ जाए उसको भी इदराक कहेंगे, ठीक है? तो इदराक की फिर तीन शक्लें क्या बयान हुई, हाथों से जाके किसी को पकड़ लिया, या अपनी नजरों से किसी को पकड़ लिया, या अपनी समझ में किसी को पकड़ लिया, ये सब इदराक कहलाएगा। तो ला तुद्रिकुहुल अबसार, ये जो हा है ना इसके अंदर, तुद्रिकु का एक फेल है, वर्ब है, उसके साथ जो जमीर हा लगी हुई है, ये हा की जमीर, हु की जमीर, बल्कि हु की जमीर किसको पॉइंट कर रही है, अल्लाह, ठीक है? कि अल्लाह तक जो है ना आंखें नहीं पहुंच सकती, ना हाथ पहुंच सकते हैं, ना समझ पहुंच सकती है, ठीक है? अल्लाह वो है जो समझ में ना आए, जो समझ में आ गया ना हमारे कंप्लीटली, जो समझ में आ गया वो अल्लाह नहीं है, वह हुआ सुबहान हुआ ताला, सुम्मा वरा उल वरा, सुम्मा वरा उल वरा, सुम्मा वरा उल वरा। हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला की शान बयान फरमाई, वह हुआ सुबहान हु, वो पाक है, वह ताला, और वो बुलंद है, ठीक है ना? ये अल्लाह ताला की सिफत है कि वो पाक है और वो बुलंद है। लेकिन कोई अगर ये समझना शुरू हो जाए कि अच्छा मैंने तो अल्लाह ताला को अब समझ लिया, हाँ समझ लिया कि वो पाक है वो बुलंद है, तो आगे फरमाया वरा उल वरा, वो उससे भी ज्यादा बुलंद है। और फिर अगर कोई समझे कि अच्छा मैंने अब अल्लाह को समझ लिया, तो फरमाया सुम्मा वरा उल वरा, वो उससे भी ज्यादा बुलंद है, जिसको तुमने समझ लिया ना वो अल्लाह उससे भी ज्यादा बुलंद है, सुम्मा वरा उल वरा, सुम्मा वरा उल वरा, सुम्मा वरा उल वरा, ठीक है? अल्लाह तो वो है जो समझ में ना आए, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह का हुक्म भी हमारे समझ में ना आए, अल्लाह की कोई सिफत भी जो है वो हमारे जो जो जरूरत के हिसाब से जो समझ जो यानी जिसको समझना हमारी जरूरत है, ठीक है, तो अब उसकी सिफत भी हमारे समझ में ना आए। कभी अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह ताला करीम है, अल्लाह ताला जो है वो जब्बार है, अल्लाह ताला जो है वो कहार है, नहीं, ये तो अल्लाह ताला की तो हम सिफत को समझ ही नहीं सकते, ये इसका मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो बातें हमें बताई है ना, जो बातें हमें अपने बारे में बताई हैं, वो किस लिए बताई हैं? ताकि हम उसको समझें, ताकि हम उनको समझें। कोई कहे कि नहीं, अल्लाह ताला तो इतना बड़ा है कि मैं तो उसको समझ ही नहीं सकता, तो फिर अल्लाह ताला के कुरान का इनकार कर रहा है, अल्लाह ताला के कलाम का, अल्लाह ताला के नबी का इनकार कर रहा है कि भाई अल्लाह के नबी ने आके हमें अल्लाह की सिफतें बताएं, और ये कह रहा है कि नहीं, अल्लाह की सिफतें तो ऐसी हैं ना जो कि मेरे समझ में ना आए, तो इस वजह से बेकार है सब कुछ, कुरान बेकार है नाउज बिल्ला, नबी की बातें बेकार है नाउज बिल्ला, है ना भाई? भाई जब आपके समझ में नहीं आ सकती तो फिर बताना बेकार है ना, ऐसी बात बताना बेकार है जो आपके समझ में ना आ सके, तो फिर अल्लाह ने बताई क्यों? भाई अल्लाह ने बताई इसलिए है क्योंकि हमारे समझ में आ सकती हैं, ठीक है ना? तो अल्लाह की सिफतें हमारे समझ में आ सकती हैं, जब ही तो अल्लाह ने हमें बताई है, ठीक है ना? अल्लाह ने हमें बनाया है ना, और अल्लाह को पता है ना कि हमारी समझ कितनी है, तो अल्लाह ने अपनी सिफतें बताई ताकि हमारे समझ में आ सके, अल्लाह ने अपने हुक्म बताए ताकि हमारे समझ में आ सके, तभी हम उन पे अमल करेंगे ना, अगर समझ में नहीं आएंगे तो अमल कैसे करेंगे, ठीक है? तो यहां पर फिर क्या चीज समझ में नहीं आती अल्लाह के बारे में? अल्लाह की जात समझ में नहीं आती, अल्लाह की जात समझ में नहीं आती, ये ऐसी चीज है जो कि हमारे समझ में नहीं आ सकती कि अल्लाह की शक्ल कैसी है, अल्लाह के जो है वो हाथ कैसे हैं, अल्लाह ताला के जो है वो पैर कैसे हैं, अल्लाह ताला की जो है पिंडली कैसी है, साख का लफ्ज कुरान मजीद में आया, लेकिन साख जो है ये उन बातों में से है जो कि समझ में नहीं आती, ठीक है? अलिफ लाम मीम हरूफ मुकत्तआत, ये भी अल्लाह के कलाम में है ना, लेकिन अल्लाह के कलाम का ये वाला हिस्सा जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। अहकाम कुरान मजीद के अंदर जो है उनके बारे में नहीं कहा कि अहकाम तुम्हारे समझ में नहीं आएंगे, लेकिन हुरूफ मुकत्तआत के बारे में कहा कि ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, तो अब वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो बयान क्यों किया? अल्लाह ने अपने राजों में से एक राज के तौर पर उसको बयान किया, समझाने के लिए बयान नहीं किया, ठीक है ना? अल्लाह की मर्जी, जो बयान करे समझाने के लिए वो समझाने के लिए समझा जाएगा, और जो बयान करे खाली बताने के लिए कि बस ये ऐसे है बस, तो वो बताने के लिए समझा जाएगा, समझाने के लिए नहीं समझा जाएगा, ठीक है? तो बंदगी इसी को कहते हैं कि जो अल्लाह ने चाहा वो करे, जो अल्लाह ने नहीं चाहा उसके पीछे ना पड़े, उसके पीछे ना पड़े, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने अहकाम हमें बताने चाहे, हमें समझाने चाहे, हमें उनको समझना है, अल्लाह ताला ने अपने सिफात हमें समझानी चाहिए, हमें उनको समझना है, अल्लाह ताला ने अपनी जात हमें नहीं समझानी चाहिए, हम उसको नहीं समझ सकते, इसको इसको तस्लीम कर लेना है कि मैं उसको नहीं समझ सकता, ठीक है? तो ला तुद्रिकुहुल अबसार के आंखें जो है ना ये अल्लाह तक नहीं पहुंच सकती, अल्लाह ताला को नहीं, अपने अंदर इहाता नहीं कर सकती अल्लाह ताला का, वहुआ युद्रिकुल अबसार, और वो यानी अल्लाह, अब देखिए यहां पर अलग जमीर है हुआ, ठीक है? तो ये जमीरें मुनफसिल कहलाती है, और पीछे जो थी हु वो जमीरें मुत्तसिल कहलाती है, ठीक है? क्योंकि वो जुड़ी हुई है एक फेल के साथ, वह हुआ और वो यानी अल्लाह युद्रिकुल अबसार, वो जा लेता है आंखों को, ठीक है? यानी हमारी जो समझ है, हमारी जो आंखें हैं, या हमारी जो पहुंच है अल्लाह ताला की, वहां तक पहुंच है, ठीक है? हमारी आंखें अल्लाह की पहुंच से बाहर नहीं है, हमारी आंखें अल्लाह की पहुंच से बाहर नहीं है, अल्लाह हमारी आंखों की पहुंच से बाहर है, ठीक है? अल्लाह ताला खुद ये बात हमें बता रहे हैं, वह हुआ और वो अल लतीफ अल खबीर, और वो लतीफ है और खबीर है, ये दोनों चीजें क्या हैं? ये अल्लाह की सिफात है, ठीक, अल्लाह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अल लतीफ अल खबीर, अल लतीफ का मतलब उर्दू जुबान के अंदर हम उसको कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, कि बहुत ही बारीक, यानी बारीक का ही तर्जुमा उर्दू में किया जाता है, यानी लतीफ, हल्का भी, यानी इसका तर्जुमा हल्के से भी किया जाता है, बहुत ही लतीफ चीज है ये, यानी समथिंग वेरी, अंग्रेजी में इसका क्या तर्जुमा किया जाता है, सो मेरे सामने भी नहीं है, जहन में भी नहीं आ रहा, तो वेरी डेलिकेट, ठीक है, समथिंग वेरी सॉफ्ट, सही है। तो अल्लाह ताला की जो है ना, वो ऐसा मामला है कि वो कोई, यानी कसीफ कस्म की चीज नहीं, कसीफ कहते हैं गाढ़ा, ठीक है, तो लतीफ जो है वो गाढ़े का ऑपोजिट होता है, तो अल्लाह ताला बहुत लतीफ है, यानी होता भी है लेकिन आसानी से अंदाजा नहीं होता उसका, ठीक है, और अल खबीर यानी वो सब कुछ जानने वाला है, खबरदार है, एलिगेंट का तर्जुमा अंग्रेजी में एलिगेंट, एलिगेंट जो है वो लतीफ के लिए, तो मेरी समझ में तो एलिगेंट जो है वो उसका तर्जुमा नहीं बनता, अल्लाह आलम। तो आपने कहीं से तर्जुमा देख के बताया या अपने तौर पर अगर लिखा है तो फिर तद जा अकुम, जैसे ये लतीफ जो होता है ना, ये उर्दू जुबान में हम ये लतीफा जोक के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जोक जो होता है ना वो बड़ा ऐसे किस्म का होता है कि उसके अल्फाज में ऐसी लताफत होती है, ऐसी डेलिकेसी होती है कि बंदा जो है ना वो उसको सुन करके जो समझ जाता है उस लतीफे को, तो फिर उसके ऊपर एक एक कैफियत तारी होती है, हंसने वाली, मुस्कुराने वाली, ठीक है, लेकिन उसके अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो कि खुद जो है ना वो ऐसे, उसमें कहकहा नहीं होता, उनके अंदर, उनके अल्फाज के अंदर कहकहा नहीं होता, अल्फाज में मुस्कुराहट नहीं होती, बल्कि उन अल्फाज में एक मानी छुपे हुए होते हैं, ठीक है ना, लतीफे के अल्फाज में मानी ऐसे छुपे हुए होते हैं कि जिसको समझ में आ जाए ना फिर उसके ऊपर असर होता है उनका, और जिसको समझ में ना आए उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, है ना भाई, ऐसे भी तो लतीफे आपने कभी सुने होंगे कि कोई बंदा सुनता है उसको समझ में नहीं आता कि इस पे हंसना भी था, है ना, तो क्यों समझ में नहीं आता, क्योंकि लतीफ लतीफ चीज होती है वो, उसी तरह जो हमारे रूह का मामला है ना, रूह जो है वो भी हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है लेकिन हम उस रूह को फिजिकली फील नहीं कर सकते, तो इसी वजह से रूह के लिए भी लतीफ का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता, ठीक है, जेंटल और कर्टियस, प्लेजेंट, जेंटल का लफ्ज तो सही है, ठीक है, सही लगता है, प्लेजेंट भी चले, कर ले इस्तेमाल प्लेजेंट भी, बहरहाल, तो वहुवल लतीफ अल खबीर, और वो जो है ना लतीफ है और खबीर है, कद जाअकुम, तहकीक, कद का जो तर्जुमा नफीस, हाँ नफीस का लफ्ज जो है ना ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है इसके लिए, नफा, वैसे नफासत जो है वैसे तो सफाई वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है नफासत, लेकिन नफीस जो है वो भी इस माने में भी इस्तेमाल होता है उस जबान, कद जाअकुम, तहकीक के तुम्हारे पास आ चुकी है, बसाइरु मिर रब्बिकुम, अब यहां पर जो बसाइर का लफ्ज है यहां से क्या मुराद, आंखें तुम्हारे रब की तरफ से नहीं बल्कि निशानियां तुम्हारी रब की तरफ से, यानी निशानियां क्या चीज होती हैं, निशानियां वो चीज होती हैं जो कि किसी की आंखों को खोल दें, ठीक है, किसी की समझ को बढ़ा दें, तो वो निशानियां होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी से कोई सवाल पूछें और उसको समझ में ना आए, तो अब आप कहेंगे अच्छा मैं तुम्हें ना कुछ हिंट्स देता हूं, मैं तुम्हें कुछ निशानियां देता हूं, हिंट्स अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, वो उर्दू में उसको निशानियां कहेंगे, ठीक है, सिंबल्स देता हूं कि जिससे तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए, तो अब जो आप निशानियां उस बंदे को बताएंगे ना, तो उससे उसकी समझ खुल जाएगी, उसकी आंखें खुल जाएंगी, अब उसको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो बसायर का जो है वो मानी ये हुआ कि तुम्हारे पास आ गई कुछ निशानियां, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, यानी रब ने ना अपने अहकामात को और अपनी रजा को और अपनी सिफात को समझने के लिए तुम तक निशानियां पहुंचा दी हैं। फमन अबसरा वाले नफसी, बस जो उनको देख ले यानी समझ ले, उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, ठीक है, और उनको फॉलो कर ले, उनके ऊपर अमल कर ले, तो वाले नफसी, फ बस ली लिए नफ्स ही, उसके अपने नफ्स के लिए, यानी उसके अपने फायदे के लिए, ठीक है, उसके अपने नफ्स का फायदा होगा, उसके अपनी जान का फायदा होगा, उसके अपनी जिंदगी का फायदा होगा, ठीक है। तो जिसने उन निशानियों की तरफ तवज्जो कर ली और उनको समझ लिया, उसका अपना फायदा है। वो मन अमिया फ अलैहा, और जो अंधा बना रहा, अल्लाह की तरफ से तो निशानियां आ गई भाई, अल्लाह ने तो हुज्जत तमाम कर दी, लेकिन इसने तवज्जो ही नहीं करी उसकी तरफ, अंधा बना रहा। क्या मतलब, आंखों से तो निशानियां देखनी पड़ गई उसको, अल्लाह की निशानियां तो ऐसी होती है ना कि जिनको क्यों कोई इग्नोर को थोड़ी कर सकता। आंखें बंद करके, फिजिकली आंखें बंद करके तो आप जिंदगी नहीं गुजार सकते ना, आंखें तो खोलनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा ना, दिन को देखना पड़ेगा, रात को देखना पड़ेगा, दरख्त को देखना पड़ेगा, पत्थर को देखना पड़ेगा, इंसान को देखना पड़ेगा, राइट। तो देखे बगैर तो रह नहीं सकता, लेकिन अंधा बन गया। क्या मतलब, सोचा नहीं उसके बारे में, तदब्बुर नहीं किया उसके बारे में, फिक्र नहीं करी उसके बारे में, तो दिल का अंधा, इसको कहते हैं दिल का अंधा बनना। तो अगर यानी जो दिल का अंधा बना रहा ना, फा बस आला, आला का मतलब होता है ऊपर, यहां पर आला का मतलब क्या, अगेंस्ट, खिलाफ, तो ये उसके अपने खिलाफ जाएगा, अलैहा, ये उसके अपने खिलाफ जाएगी बात, ठीक है। जैसे कोई मुसीबत आती है ना किसी को, तो हम उसको उर्दू में भी कहते हैं मुसीबत इसके ऊपर पड़ गई, यानी ऊपर से आती है मुसीबत और पड़ जाती है किसी के ऊपर। तो आला का जो है ना लफ्ज, इसको ऊपर से आई हुई चीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, अबव, ऊपर, ठीक है। तो मुसीबत पड़ गई उसके ऊपर, यानी इसका अंधापन जो है ना, इख्तियारी अंधापन, ये इसके खिलाफ ही जाएगा, इसको नुकसान पहुंचेगा इससे। वमा अना अलैकुम बेहफीज, और मैं नहीं, वा वाओ का तर्जुमा, और माँ का मतलब यहाँ पर माए नाफिया है, नहीं, अना, अना का मतलब होता है मैं, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, बेहफीज, हफीज कहते हैं निगहबान। तो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि कि मैं तुम लोगों के ऊपर ना निगेबान नहीं, ठीक है, यानी वो कहते हैं कि कोई निगेबान का मतलब जैसे कोई काम करवाने वाला, ठीक है, तुम्हारे अमलों का निगेबान, ठीक है। यहाँ पे जब भी देखें आगे खुलासा तफसीर में, हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने इसकी तफसीर में क्या लिखा है कि मैं तुम्हारे अमाल का निगेबान नहीं, निगरान नहीं, ठीक है, यानी मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, पहली बात, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता कि तुम ये वाला काम करो, ठीक है। इसके अंदर मजीद तफसील है, लेकिन कम से कम इतनी तो इसके अंदर जरूर है कि मैं तुम्हारे दिलों को फोर्स नहीं कर सकता, दिलों को फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरी बात ये भी कि ये नबी अलैहिस्सलाम की तरफ ये जमीर लौटनी ना, अना, अना से मुराद यहाँ पर कौन, नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो अब नबी अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने आलिमुल गैब नहीं बनाया ना, कि नबी अलैहिस्सलाम को सब कुछ नजर आता हो, नबी अलैहिस्सलाम दीवार के पार भी हर वक्त देख रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो दुनिया के किसी कोने में क्या चीज हो रही है वो भी देख रहे हैं, नहीं, अल्लाह ताला ने आलिमुल गैब नबी अलैहिस्सलाम को नहीं बनाया। ठीक है, तो अब कोई दुश्मन है, कोई काफिर है, वो कोई काम कर रहा है नबी अलैहिस्सलाम के पीछे, या मुनाफिक है कि सामने आकर के तो कुछ और करता है लेकिन पीछे जाकर के कुछ और करता है, नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पता कि वो मुनाफिक क्या कर रहा है। जब तक कि अल्लाह ताला अपने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वास्ते से नबी अलैहिस्सलाम को ना बता दे, नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पता कि मुनाफिक क्या कर रहा है। ठीक है, तो जो मुहाफिज होता है ना, मुहाफिज तो फिर वो हर चीज पे नजर रखने वाला होता है ना कि कौन क्या कर रहा है, किस वक्त क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जैसे कि सिक्योरिटी कैमराज हर जगह आजकल लगाए हुए होते हैं ना, तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो वो जिस जगह बैठे होते हैं तो फिर वो सिक्योरिटी कैमराज की स्क्रीन्स को देख रहे होते हैं, क्योंकि उनको हिफाजत का की जिम्मेदारी दी है ना। तो अभी हिफाजत करने वाला जो है वो तो देखेगा ना उस चीज को जिसकी की हिफाजत उसके जिम्मे लगाई गई है। ठीक है, तो वो देखेगा तभी हिफाजत करेगा ना, बगैर देखे कैसे हिफाजत कर सकता है। तो जिस तरीके से ये सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो कैमरों में देख करके फिर हिफाजत करता है, नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे सिक्योरिटी गार्ड नहीं, ऐसे कैमरे नहीं अता फरमाए ताला कि आप जो है वो हर एक के अमाल को देखते रहे, हर एक की जो है वो दिल की नियतों को देखते रहे। भाई कशफ व अलहाम जो है वो तो एक्सेप्शन होता है ना, हर वक्त थोड़ी होता है। ठीक है, तो जब अल्लाह ताला देते हैं तब कशफ होता है, तो फिर किसी की नीयत का पता चल जाता है, किसी के दिल की कैफियत का पता चल जाता है, वरना तो नहीं पता चलता। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो हफीज बना के नहीं भेजे गए, कोई वॉच वॉच गार्ड बना करके नहीं भेजे गए। ठीक है, वमा अना अलैकुम बिहफीज, जैसे कुरान मजीद में दूसरी जगह भी, फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, कि आप नसीहत करते रहिए, आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ नसीहत करने वाले बना के भेजे गए। लस्ता अलैहिम बेमुसैतर, आप नहीं है, लस्ता लस्ता का मतलब आप नहीं है, अलैहिम उनके ऊपर, बेमुसैतर मुसैतर यानी दरोगा, दरोगा से तर्जुमा करते हैं ना, वॉच गार्ड, दरोगा यानी जो के मार मार के किसी से कोई काम करवाए, आप ये आपका काम नहीं है, लोगों को मार मार के उनसे काम करवाना, उनको ईमान पे लेकर के आना, ये आपका काम नहीं। आपका काम है याद दहानी करवाना, और आपका काम है सही और गलत की कफरत बता देना लोगों को। ठीक है, तो ये है यहाँ पर भी वमा अना अलैकुम बेहफीज, ये जो बा लगाते हैं ना, ये मा अना के साथ जो है ना, जो ये एक नाफिया अरबी जुबान का एक ये कॉन्स्ट्रक्ट है, ये के बा लगाना, ये सिला कहते हैं इसको, ये बा का सिला जो लगाना होता है, वरना यहाँ पर बा का कोई तर्जुमा नहीं किया जा सकता, ये बा क्यों लगा हुआ है। ठीक है, या अगर करें भी तोड़ खींचतान करके तर्जुमा भी करें, तो भाई बा का मतलब जो होता है वो साथ होता है, तो मैं आपके साथ, मैं तुम लोगों के साथ जो है ना वो मुहाफिज के तौर पे नहीं लगाया गया। ठीक है, बहरहाल तो हफीज का लफ्ज असल में समझने के जरूरत है। वकदालिका नुसर्रिफुल आयात, और कदालिक ऐसे ही, इसी तरह, यूं, नुसर्रिफुल आयाती, हम फिरा फिरा करके समझाते हैं, नुसर्रिफ फिर हम फिराते हैं यानी फेर फेर करके, कभी इस तरीके से, कभी इस तरीके से, कभी इस तरीके से आयात को, अपनी आयात को, अपनी निशानियों को। और यहाँ पर जो कुरान मजीद की आयात हैं वो भी अल्लाह ताला की निशानी है, सबसे बड़ के निशानी है तो कुरान मजीद की आयात ही है, क्योंकि वो कुरान मजीद अल्लाह ताला का अपना कलाम है, और बाकी जो चीजें हैं, दरख्त पत्थर वगैरह, ये अल्लाह ताला की मखलूक है, कुरान मजीद अल्लाह ताला की मखलूक नहीं है, कुरान मजीद तो अल्लाह ताला की सिफत है, अल्लाह ताला का कलाम है। तो कलाम सबसे बड़ी आयत होगी या मखलूक ज्यादा बड़ी आयत होगी? ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की सिफत, अल्लाह ताला का कलाम ज्यादा बड़ी आयत। ठीक है, और बाकी मखलूक जो है वो उसके बाद दूसरे दर्जे पर, अल्लाह ताला की आयत है। ठीक है, तो कदालिक नुसर्रिफुल आयाती, इसी तरीके से यूं तरह तरह से समझाते हैं हम आयतें, वले यकूलू दरस्ता, और ली का मतलब ताके, सो दैट यकूलू, वो कहें, वो से मुराद ये इनकार करने वाले, ये काफिर लोग, और ताकि ये काफिर लोग कहें दरस्ता तुमने तो पढ़ा है, ठीक है, दरस्ता तुमने तो इसको पढ़ा है, यानी किसी के पास बैठ करके ना, जिस तरह एक शागिर्द किसी उस्ताद के पास जाकर के चीजें पढ़ता है ना, तो ये जो चीजें तुमने अभी बयान करी है ना, ये तो तुमने किसी से पढ़ी हुई है, ठीक है, यानी ये जो साइंस तुमने बयान करी ना, साइंस, ठीक है, ये साइंस क्या थी, पीछे अल्लाह ताला ने जो साइंस बयान करी ना नबी अलैहिस्सलाम के जरिए से नूह के सामने, क्या था, वहुवल्लज़ी अनज़ला मिनस्समाई माअ فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. ये क्या थी, ये सारी की सारी साइंस है, ठीक है ना, साइंस इज व्हाट, ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स, फिजिकल यूनिवर्स, ठीक है, बारिश, पौधे, और जो है वो फल फ्रूट, ठीक है, और जो है वो इनकी किस तरीके से ये एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, राइट, और जो स्टार्स, सूरज, चांद, ठीक है, इन सब की ऑब्जर्वेशन, इन सब की जो डिस्कशन होती है, इसी को हम साइंस कहते हैं, अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है, उस जमाने में तो अंग्रेजी थी भी नहीं, अरबी थी और लैटिन थी, यूरोप के अंदर लैटिन और जो है वो अरामेक और दूसरी लैंग्वेजेस थी, अंग्रेजी बाद में डेवलप हुई है, जैसे उर्दू भी बाद में डेवलप हुई है, ठीक है, तो अब अंग्रेजी डेवलप हो गई तो उसमें एक लफ्ज निकाल दिया साइंस, ठीक है, उसको साइंस कहना शुरू कर दिया, हम इसको साइंस ही समझते हैं, ठीक है ना, तो भाई ये जो साइंस है ना, ये अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ाई, लेकिन ये क्या कहते थे, नहीं तुमने साइंस जो है वो किसी और से जाके पढ़ी है, किसी बंदे से पढ़ी है, इस वजह से तुम ये सारी बातें बयान कर रहे हो, ठीक है, तो ये इनकी जिद की वजह से, ठीक है, हालांकि इनको अच्छी तरह से ये अंदाजा था कि इस तरह की साइंस जो है ना, जो ये बयान कर रही हैं, ये पहली बात तो ये कि ये ऐसी बयान की ही नहीं जा सकती, कोई बंदा बयान कर ही नहीं सकता, ठीक है, कोई इंसान बयान कर ही नहीं सकता इस तरह की साइंस, ठीक है, कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के स्टेटमेंट्स देना, ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट्स देना कि जिनसे जो है वो कोई एग्जिट नहीं किया जा सकता, कोई एक्सेप्शन नहीं निकाला जा सकता, ऐसी स्टेटमेंट जो है वो कोई बंदा दे ही नहीं सकता, ये तो खाली बनाने वाला ही दे सकता, और दूसरी बात इनको अच्छी तरीके से पता थी कि नबी अलैहिस्सलाम तो इनकी आंखों के सामने रहे हैं, राइट, कोई छुपा हुआ वक्त नहीं है नबी अलैहिस्सलाम का, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम छुप करके किसी उस्ताद के पास चले गए हों, जो कि बड़ा गहरा किस्म का और बड़ा ही जो है वो अकॉम्प्लिश किस्म का साइंसदान हो, और उसके पास बैठ करके ये पढ़ते रहे हों, ऐसा कोई वक्त ही नहीं आया नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में, एक गारे हिरा में जो चंद घंटे और चंद दिन जो नबी अलैहिस्सलाम ने वहां पर स्पेंड किए, वो इन लोगों को भी अच्छी तरीके से पता था कि गारे हिरा के अंदर कोई साइंसदान नहीं बैठा हुआ था, कोई अरस्तू नहीं बैठा हुआ था, कि आप सरसरम ऊपर जाकर के हिरा के अंदर बैठ करके अरस्तू से तालीम हासिल कर रहे थे, या सुकरात से, उस जमाने के सुकरात से तालीम हासिल कर रहे थे, नहीं, अकेले होते थे वहां पर, ठीक है, और उसके अलावा कोई टाइम ही नहीं था नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जो कि इन लोगों की निगाहों से पोशीदा हो, आप सरसरम वॉज अ सोशल पर्सन, हमेशा मक्का मुकरमा में रहे, ठीक है, वो जो जवानी के अंदर सफर करने गए भी ना, वहां से भी वापस लौटा दिया गया, नहीं भी वापस जाओ, वापस जाओ, ये आगे चले जाएंगे ना तो इनके लिए मुसीबत हो जाएगी, इनको वो लोग नुकसान पहुंचा देंगे, तो चचा को बता दिया कि वो राहिब मिल गया रास्ते में, तो राहिब ने कहा कि भाई इनको वापस भेजो, इनको आगे मत लेकर के जाओ, तो ये शाम तक पहुंच ही नहीं सके नबी अलैहिस्सलाम, ये मक्का वालों के सामने, ठीक है, लेकिन जिद जब किसी के ऊपर गालिब आ जाती है ना, तो वो आंखों देखी बात का भी इनकार कर देता है, ये जिद होती है इंसान का अपना, अंदर जो छोटा खुदा बैठा हुआ है ना, छोटा खुदा ये करता है इस तरह की हरकतें, तो इस वजह से ना अल्लाह ताला को तो पता है कि इनके अंदर छोटा खुदा बैठा हुआ है, इसको उन्होंने अपना बड़ा खुदा भी बना लिया है, अपने नफ्स को अपना बड़ा खुदा भी बना लिया, हालांकि है वो निक्का सा, एक छोटा सा बुद्धू सा खुदा, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फिर इस तरह की बातें जो है ना वो जो बयान करी, वो फरमाते हैं कि मैंने इस तरह की बातें इनको इस तरह बयान करी ताकि ये जो है ना वो अपने उस छोटे खुदा से मुतासर हुए हुए हैं ना, तो इस वजह से ताकि ये भी जुबान से भी ये कह दें बेवकूफी की बातें, जुबान से ऐसी बेवकूफी की बातें कहें कि जो कि इनके अपने खिलाफ हुज्जत बन जाए, तो क्या बेवकूफी की बात इनसे कहलवाई अल्लाह ताला ने इस तरीके से इनको घेर करके, इनको घेरा यानी इंटेलेक्चुअली इनको घेरा, इनको फंसाया और फिर इनसे बेवकूफी का एक कलमा कहलवाया। क्या कहा इन्होंने, दरस्ता तुमने तो पढ़ाई किसी से, तो छोटा बच्चा भी जो है ना जिसके ऊपर इनको लान तान कर सके कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्या खांस खा गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम इनको कह रहे हो कि इन्होंने पढ़ा है। भाई इन्होंने कहां से पढ़ लिया, ये कहां से कौन पढ़ाने वाला इनको आया, किसने इनको लेक्चर दिए, किसने इनको साइंस पढ़ाई, किसने इनको जो है वो कायनात की जो है वो ये तफसीलात बताई, है ना, यानी जलील और रुस्वा कर दिया अल्लाह ताला ने इनको ऐसी बात कहलवा करके इनसे, दरस्ता। ठीक है, तो ऐसे अल्लाह ताला की मदद आती है इंटेलेक्चुअली अपने नबियों को सुरखुरू करने के लिए, बेवकूफी की बातें करवाते हैं मुनकरों से, अल्लाह ताला करवा देते हैं। तो कदार का नुसर्रिफुल आयाती वली यकूलू दरस्ता, ताकि ये भी कह उठे कि तुमने तो ये किसी और से हासिल किया, ठीक है ना, हमें जो है वो किसी ने भेजी एक वीडियो, किसी वीडियो भेजी, छोटा सा एक लेक्चर था एक साहब के, बल्कि एक लेक्चर का उनका जो है वो एक्सेप्ट था, कुछ साइंस वाइंस पढ़ के आ गए थे, ठीक है, साइंस पढ़ लेते हैं ना तो फिर उनका आज की साइंस, वरना साइंस तो कुरान मजीद में भी है, साइंस तो जो है वो तो मुसलमानों ने भी उसमें खूब तरक्की करी और जो कुछ बनाया दुनिया के अंदर वो साइंस पढ़ कर करके बनाया। हम तो कई दफा ये बात क्लास में कर चुके हैं, तो हम तो साइंस के खिलाफ नहीं है, कोई भी मुसलमान साइंस के खिलाफ नहीं हो सकता, कुरान के खिलाफ हो सकता है कोई मुसलमान, कोई अच्छा समझ रखने वाला मुसलमान, जिद्दी की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है ना, जिद्दी और बेवकूफ इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी मानने वाले मुसलमान की बात कर रहे हैं, वो तो साइंस के खिलाफ हो ही नहीं सकता क्योंकि साइंस तो अल्लाह ताला की तखलीक है, अल्लाह ताला की मखलूकात का इल्म है। लेकिन जो आजकल जो साइंस हमारे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती है तो वो तो भाई काफिर ने लिखी है ना, वो तो काफिर ने लिखी, और जो लिखने वाला होता है तो उसके जो दिल की कैफियात होती हैं वो तो उसकी लिखाई के अंदर मुनक्किस हो रही होती है, वो तो खास तौर पर लिखता ही इसलिए है अपनी बात को ताकि सुनने वाला जो है वो उससे मुत्तफिक हो जाए, उससे एग्री करना शुरू हो जाए। तो काफिर का क्या है व्यू पॉइंट, काफिर का व्यू पॉइंट क्या है, नो नबी, नबी अलैहिस्सलाम इज नॉट द नबी, राइट, और जितना और कुफर में बढ़ता है तो फिर वो फरिश्तों का भी इनकार करने वाला काफिर होता है, वो अल्लाह का भी इनकार करने वाला काफिर बन जाता है, नबी का इनकार तो बेयर मिनिमम है काफिर होने के लिए, है ना। तो अब जो उसका व्यू पॉइंट जो है, काफिर साइंसदान का व्यू पॉइंट जो है, जब वो अपनी किताबें लिखता है, साइंस की किताबें लिखता है, तो उसको पढ़ने वाला फिर उसके व्यू पॉइंट से एग्री करना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह के एक साहब जो है वो उन्होंने क्या किया, इसी तरह के एक वरना तो बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की, उन्होंने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ ली, ठीक है, और फिर साथ साथ उन्होंने कुछ अरबी शरबी भी पढ़ ली, अरबी कभी लगता है उनके बयान से लग रहा है, फिर ऐसे उन्होंने कुछ सरफना वगैरह भी पढ़ लिए, ठीक है, तो अब उन्होंने बच्चों को जो है वो कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, अल्लाह के बारे में बता रहे हैं कि देखो साइंसदानों ने जो है ना वो अल्लाह के बारे में क्या क्या बातें हमें बताई, ठीक है, कि हमारी बॉडी में इतने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और अल्लाह ताला ने ये सेल्स बनाए हैं और वो सेल्स जो हैं वो हमारी यानी हर सेल जो होता है वो इतने वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होता है और ये कर रहा होता है, ठीक है भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है ना वो साइंस की किताब पढ़ के जो है वो अल्लाह ताला की अजमत बयान कर रहे हैं, लेकिन तरबियत याफ्ता नहीं है, तालीम याफ्ता तो हैं, साइंस भी पढ़ ली और थोड़ी अरबी भी पढ़ ली, लेकिन तरबियत याफ्ता नहीं है वो साहब, तो इस वजह से ना जहां वो ये बयान करें कि अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया, अल्लाह ताला ने बनाया, वहीं पे साथ साथ मौलवी की बुराई। मौलवी ने कभी आपको ये बात नहीं बताई होगी, मौलवी ने कभी आपको ये बात नहीं बताई होगी, है ना। ओ भाई मौलवी क्यों बताया यार ये वाली बातें, तो मौलवी का पीछा नहीं छोड़ सकते। मौलवी का काम जो है वो अल्लाह के अहकामात बतलाना है, वो कम से कम वो तो कर रहा है ना। अब वो मौलवी जो है वो आजकल का मौलवी अगर साइंसदान बन जाएगा तो फिर वो ना ये काम कर सकेगा ना वो काम सही तरह से कर सकेगा। तो तुम साइंसदान हो तो तुम साइंस पढ़ो और साइंस की बातें बयान करो और उनको अल्लाह ताला की अजमत के लिए बयान करो। यहां तक तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, लेकिन बीच बीच में मौलवियों को बुरा भला कहना, ये तुमने ये क्यों कर रहे हो तुम, ठीक है ना। तो वो साहब जो है वो 8-9 मिनट का लेक्चर किसी ने हमें भेजा, हमें तो क्या भेजा, अनफॉर्चुनेटली ग्रुप पे भेजा होगा, ठीक है। तो उसमें जो है वो अल्लाह की अजमत भी बयान करें और साथ साथ मौलवी की बुराई भी बयान करें, अल्लाह की अजमत भी साथ साथ उलेमाए कराम की बुराई भी, बाकायदा लफ्ज भी, उलेमाए कराम ने कभी आपको ये बयान नहीं किया होगा। तो ये बेतरबियत याफ्ता शख्स के जब हाथ में कुछ आ जाता है ना तो वो ऐसी हरकत कर रहा होता है। उसके बाद भाई मौलवी की बुराई किए बगैर तुम ये बात नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बता, मैं अच्छा है भी क्या, सूटेड बूटेड वही गोरे की का लिबास पहने हुए, गोरे की जो है वो शक्ल भी बनाए हुए, ना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत चेहरे पे सजाई हुई है बल्कि क्लीन शेव्ड भी है, ठीक है। एक तो वो ये बयान कर रहे हैं मौलवी की बुराई ना, एक तो अल्लाह की अजमत, उस उनके उस छोटे से बयान के अंदर तीन चीजें सबसे ज्यादा डोमिनेंट, क्या अल्लाह की अजमत बयान करना है, बहुत अच्छी बात, दूसरी चीज मौलवी की बुराई, और तीसरी चीज क्या, तीसरी चीज कि जो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनकी अजमत, उनकी अच्छाई, उनकी नेकोकारी, यानी उनका एक ये छोटा सा बयान सुन करके आपके दिल में अल्लाह की अजमत तो क्या आएगी, क्योंकि असल में तो दूसरा मसला भी साथ साथ चल रहा था, वो तो आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। लेकिन मौलवी की बुराई और साइंसदान की अजमत जरूर आ जाएगी, क्योंकि वो अपने बयान में क्या कहते हैं कि साइंसदान कितने अच्छे लोग हैं। साइंसदान जो है वो ये नहीं कहते कि हमने कोई चीज बनाई है, वो तो अल्लाह की मखलूक के जो तफसीलात हैं वो बयान करते हैं, अल्लाह का कानून बयान करते हैं। तो भाई इस तरह की बातें सुन सुन करके साइंसदान की तो मोहब्बत पैदा होगी ना और साइंसदान की तो अजमत पैदा होगी ना, लेकिन साथ साथ मौलवी की बुराई और मौलवी की यानी उलमाए कराम, और उलमाए कराम का लफ्ज भी इस्तेमाल किया, मौलवी का भी लफ्ज शायद इस्तेमाल किया, लेकिन उलमाए कराम का तो लफ्ज इस्तेमाल किया। उलमा ये नहीं बताते, उलमा वो नहीं बताते, उलमा ये नहीं बताते, हत्ता के हदीस तक भी बात आ गई। एक तो ये ना कि भी साइंस नहीं बताते उलमा, लेकिन करते 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 ये भी बोल गए कि उलमा तुम्हें, आप लोगों को हदीस भी नहीं बताते कि नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराया करते थे, ये हदीस भी नहीं बताते नबी उलमाए कराम, बस डांटते रहते हैं उलमाए कराम। तो उस पे हमारे बेटे साहब भी हमारे साथ सुन रहे थे इस वाले क्लिप को, तो वो कहते हैं कि अबू ये भी तो नहीं मुस्कुरा रहे हैं, ये उलमा को जो इतना ब्लेम कर रहे हैं कि उलमा मुस्कुराते नहीं है, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम तो मुस्कुराया करते थे, तो ये भी तो नहीं मुस्कुरा रहे हैं, ये भी तो डांटे चले जा रहे हैं। और ये वाली हदीस के नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराया करते थे, तो भाई आपने यही वाली हदीस पढ़ी, वो वाली हदीस नहीं पढ़ी कि जिसमें नबी अलैहिस्सलाम को गुस्सा आता था और इतना शदीद गुस्सा आता था कि आप सल्लम के चेहरे मुबारक की रगें तन जाती थी और आप सल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाया करता था, ये वाली हदीस तुमने नहीं सुनी, सिर्फ मुस्कुराने वाली सुनी। बस वो बोझ है उलमा के खिलाफ। देखें इस तालीमी निजाम से जो कि लॉर्ड मू काले का और उसके जैसे लोगों का बनाया हुआ तालीमी निजाम है ना, मसला सारा का सारा यह है कि इस तालीमी निजाम को पढ़ के फिर मौलवी की नफरत और इस तालीमी निजाम के बनाने वालों की मोहब्बत, क्योंकि नेचुरल सी बात है भाई, जिसका तालीमी निजाम होगा उसकी मोहब्बत आएगी आपके दिल में और जो उसके दुश्मन होंगे उनकी नफरत आएगी आपके दिल में, ठीक है। तो ये नीम हकीम खतरे जान वाला मामला होता है, थोड़ी सी साइंस पढ़ ली अब जो है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू हो गए, ठीक है। तो बात ये चल रही थी कि वली यकूब दरअसल जिद में जो आ जाता है ना, तो फिर वो इस किस्म की बातें करता है जो कि इंतहाई बेवकूफ़ की बातें होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें भी समझ में नहीं आ रही होती कि वो क्या बेवकूफ़ की बातें कर रहे हैं। वली नुबैना हो ले कौमी आलम, और ताकि हम वाजह कर दें, बैना यू बैनु तिबियानन, हम वाजह कर दें उसको लिकौमी यालमून, समझ रखने वालों की कौम के लिए। ठीक है, जो लोग समझ रखते हैं, जो कि इल्म रखते हैं। इल्म रखने से यहाँ पे मुराद क्या, सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स का इल्म कि भाई ये इस वक्त हुआ था, वो ऐसे हुआ था, और ये जो है वो उसने किया था, और उसकी डेट ऑफ बर्थ ये थी, और उसकी डेट ऑफ डेथ ये थी, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स का इल्म कहलाता है। बट यहां पर क्या मुराद है कि इल्म से जो है वो सही नतीजा अखज भी करने वाले लोग, ठीक है, जिनकी जो समझ है ना वो फितरत के मुताबिक हो, सही सलीम हो, और वो बायस ना हो। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना हम बातों को खोल खोल करके बयान करते रहते। ये कौमी या अलमून इत्तबे मा ऊहिया इलैका मिन रब्बिक, तो आप इत्तेबा कीजिए जो वही की गई है आपकी तरफ, आपके रब की वही की गई है आपकी तरफ, आपके रब से या आपके रब की तरफ से। ठीक है, आप उसकी इत्तेबा करें, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है, जो आपको कहा जा रहा है, आप वही करते रहें। ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय उसके। ठीक है, तो हुआ पीछे भी हुआ जो है वो अल्लाह की तरफ पॉइंट कर रहा था, और यहां पर भी हुआ अल्लाह की तरफ पॉइंट कर रहा है। वह अरद अनिल मुश्रिकीन, और इन मुश्रिकीन के मुंह ना लगिए, इनसे एराज कीजिए। ठीक है, क्या मतलब, दावत तबलीग का काम कीजिए, बलाहुल मुबीन का काम कीजिए, लेकिन जब ये आपकी जान को आने की कोशिश करें ना, तो उनसे फिर एराज कीजिए। हाँ, जब कताल का हुक्म आएगा, इन मुशरिकीन के साथ लड़ने बढ़ने का जब हुक्म आएगा, तब हुक्म को पूरा कीजिए, तब तो आप जाके लड़िए, फिर अपने साथ वालों को भी जो है वो लड़ने वड़ने के ऊपर उभारिए। लेकिन जब तक हुक्म नहीं आ रहा, उस वक्त तक क्या कीजिए, जो आपकी मेन ड्यूटी है यानी दावत व तबलीग। ठीक है ना, यतलू अलैहिम आयाती, आयात की तिलावत का काम, और जो है वो उन तक बलागुल मुबीन का काम, ये आप करते रहिए, और बाकी उनसे उनकी बेहूदगी वाली बातों से आप एराज करते रहिए। वलौ शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह ताला चाहता, मा अशरकू, तो ये लोग शिरक नहीं कर सकते थे। ठीक है, अल्लाह ताला अगर चाहता तो ये लोग शिरक नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या चाहा कि इख्तियार दे दिया बंदों को, इख्तियार दे दिया कि अब जो है ना तुम इख्तियार कर लो, जो तुमने तौहीद इख्तियार करनी है या तुमने शिर्क इख्तियार करना है, तुमने यकसुई इख्तियार करनी है तो यकसुई इख्तियार कर लो, तुमने डिस्ट्रैक्शंस इख्तियार करनी है तो डिस्ट्रैक्शंस इख्तियार कर लो। ठीक है ना, तो अल्लाह ताला की चाहत यह है कि हमें इख्तियार दे दिया। अगर अल्लाह की चाहत होती कि नहीं इख्तियार देते, तो हम भी फरिश्ते होते, है ना, फरिश्ते भी तो अल्लाह के मखलूक हैं, तो फरिश्तों के पास तो इख्तियार नहीं है, जानवर भी अल्लाह की मखलूक है, जानवरों के पास भी इख्तियार नहीं है, राइट, पत्थर भी अल्लाह की मखलूक है, जमादात उनके पास भी इख्तियार नहीं है, पौधों के पास भी इख्तियार नहीं है, जो जैसा बना दिया उसने वैसे ही करना है, इख्तियार इख्तियार कोई नहीं है। भाई इंसान क्यों बनाया अल्लाह ताला ने, अगर इख्तियार नहीं देना था तो अल्लाह ताला जानवर और बना देते, है ना, नई किस्म के जानवर बना देते, या पौधे बना देते मजीद, या जो है वो पत्थर बना देते, या जो है वो फरिश्ते और पैदा करते थे। भाई इंसान और जिन भी, इंसान और जिन को तो बनाने का मकसद ही क्या था, इख्तियार देना ताकि इनकी आजमाइश की जाए, ताकि इनको जो है वो टेस्ट किया जाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला यहाँ पर ना इस रियलिटी को फिर रिपीट कर रहे हैं, और भी कुरान मजीद में और जगहों पर भी अल्लाह ताला ने ऐसी बात फरमाई है कि अगर अल्लाह चाहता ना, तो फिर ये नहीं कर सकते थे ये उल्टी सीधी हरकत, लेकिन भाई अल्लाह ने चाहा ही नहीं है वाली बात, अल्लाह ताला ने ऑप्शन दे दिया, इख्तियार दे दिया, चॉइस दे दी। तो वलो शाह अल्लाह, अगर अल्लाह ताला चाहते तो ये लोग शिर्क नहीं कर सकते थे। वमा जअलना का अलैकुम हफीजा, और हमने नहीं बनाया आपको इन पर हफीज। और हफीज के बारे में पीछे तफसील से बात हो चुकी है, हमने आपको इनके ऊपर निगरान, दारोगा और डंडे मारने वाला नहीं, ठीक है। वमा अंत अलैहिम बेवकील, और नहीं है आप, यहां पर भी माँ जो है वो नाफिया, पीछे भी माँ जो है वो नाफिया, उससे पीछे भी माँ जो है वो नाफिया ही था, नफी करने वाला। अंत अलैहिम, आप इनके ऊपर बेवकील, ठीक है। जैसे पीछे था वमा अना अलैकुम बिहफीज, तो वहां यहां पर वमा अंत अलैहिम बेवकील, अब इनके ऊपर वकील भी नहीं है। वकील का मतलब क्या होता है? वकालत करने वाला, किसी के बिहाफ के ऊपर केस लड़ने वाला। आप इन इनके बिहाफ पे, यानी इनकी तरफ से जो है ना, वो केस लड़ने वाले नहीं है, ठीक है। शफात करने वाले हैं, शफात करना जो है वो केस लड़ना नहीं कहलाता, ठीक है। तो शफात बेशक अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को देनी है मकाम शफात, लेकिन वो भी किसके लिए? ईमान वालों के, काफिरों के लिए, ठीक है। तो इनके तो ना आप शफी हैं और ना आप इनके वकील हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हमने तर्जुमा इन आयात का पढ़ के मुकम्मल कर लिया। अगली क्लास में थोड़ा सा तफसीर पढ़ेंगे। किसी को कोई सवाल हो या कुछ बताना हो कमेंट, तो वो चैट विंडो के ऊपर लिख के कर सकते हैं। कोई सवाल नहीं है तो हम यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। वह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या अंधेरे में नमाज पढ़ सकते हैं? अंधेरे में नमाज पढ़ सकते हैं जी, पढ़ सकते तो हैं अगर मजबूरी हो, लेकिन रोशनी में पढ़नी चाहिए, कोई हराम नहीं अंधेरे में नमाज पढ़। सलाम।